24 अगस्त दिन बुधवार दिन भर मैं हूं रेहान फतक। इटली में आए भूकंप से भारी तबाही, 60 लोगों की मौत। गोंडा के पास बाढ़ के हाल पर भी रहेगी हमारी नजर। देखेंगे हांगकांग में लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारी फिर क्यों हैं सड़कों पर।
एक ऑब्सेशन है चीन में स्प्लिटिज्म को लेकर कि शायद हांगकांग में ऐसी आवाजें हैं जो आज भी आजादी की बात करती हैं, बहुत कम उसमें नंबर है उनका, पर ये जो एक तरह का पैरानोया का माहौल है वो चीन को हमेशा ओवर रिएक्ट करने पर मजबूर करता है।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार अमरेश द्विवेदी से। मध्य इटली में आए भीषण भूकंप ने कई पर्वतीय शहरों और गांवों को तबाह कर दिया है। भूकंप में कम से कम 38 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग जख्मी हुए हैं। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 6.2 मापी गई है। मध्य रात्रि में आए इस भूकंप ने लोगों को खुद के बचाव का मौका भी नहीं दिया। एक नागरिक सुरक्षा अधिकारी ने बताया है कि एक क्यूमोली गांव में करीब 150 लोगों का कोई पता नहीं चल पा रहा है। वहीं एमेट्राइस के मेयर का कहना है कि शहर के 3/4 घर तबाह हो गए हैं। इटली के प्रधानमंत्री मात्तियो रेंजी ने कहा है कि मलबे में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने में कोई कसर बाकी नहीं रखी जाएगी। उधर भारत के पड़ोसी देश म्यांमार के मध्यवर्ती इलाकों में भी 6.8 की तीव्रता का भूकंप आया। इस भूकंप के झटके थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक और बांग्लादेश की राजधानी ढाका तक महसूस किए गए। भूकंप की वजह से एक व्यक्ति के मारे जाने की पुष्टि हुई है। भारत के कोलकाता, पटना और गुवाहाटी शहरों में भी लोगों ने भूकंप का असर महसूस किया। म्यांमार में भूकंप से दर्जनों इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं, जिनमें प्राचीन शहर बागान के कई प्रसिद्ध मंदिर भी शामिल हैं। इंटरनेट पर पोस्ट किए गए वीडियोस में कुछ मंदिरों के शिखर के ढहने और धूल के अंबार देखे जा सकते हैं। सीरिया के सीमावर्ती इलाकों में इस्लामिक स्टेट के चरमपंथियों को भगाने के लिए की गई एक बड़ी कार्रवाई के तहत तुर्की के टैंक सीरियाई सीमा में दाखिल हुए हैं। इस ऑपरेशन का नेतृत्व सेना के विशेष दस्ते ने किया है, जिसे अमरीकी नेतृत्व वाली गठबंधन सेना के विमानों से मदद मिली है। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब एर्दोगान ने इस अभियान की पुष्टि की है और कहा है कि हमले में सीरिया में मौजूद कुर्द चरमपंथी समूहों को भी निशाना बनाया गया। आज तड़के 4 बजे हमारी सेना ने दाएश और उत्तरी सीरिया में तुर्की को चुनौती दे रहे कुर्द चरमपंथी लड़ाकों के खिलाफ ऑपरेशन की शुरुआत की। ये थे तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान के शब्द। इस कार्रवाई में सीरिया के तुर्की समर्थक विद्रोही भी शामिल हुए और खबरों के मुताबिक उन्होंने इस्लामिक स्टेट के नियंत्रण वाले सीमावर्ती जराबलस शहर को भी कब्जे में ले लिया है। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें फ्रांस की पुलिस दक्षिणी नीस शहर के तट पर एक मुस्लिम महिला से लंबी बाहों वाला कपड़ा हटाकर बाहें दिखाने को कहती नजर आ रही है। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद बुर्किनी नाम के स्विम सूट पर लगी पाबंदी को लेकर गंभीर विवाद छिड़ गया है। फ्रांस में मुसलमानों के अधिकारों के लिए काम करने वाले एक गुट का कहना है कि पिछले कुछ हफ्तों में नए कानून के तहत 16 महिलाओं पर जुर्माना लगाया गया है, जबकि किसी भी महिला ने बुर्किनी नहीं पहन रखी थी। बुर्किनी पर प्रतिबंध के मामले पर फ्रांस की शीर्ष अदालत में गुरुवार को सुनवाई होगी। भारत प्रशासित कश्मीर में सुरक्षा बलों और अलगाव समर्थक प्रदर्शनकारियों के बीच हुई ताजा हिंसा में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फदल का। इटली में आए एक भयंकर भूकंप ने कई शहरों और गांवों को तहस नहस कर दिया है। मध्य इटली के अमाट्रीचे शहर और कुछ गांवों में भूकंप से बहुत नुकसान हुआ है। 6.2 की तीव्रता वाले इस भूकंप के कारण अमाट्रीचा के गांव में सभी मकान और इमारतें ध्वस्त हो गई हैं। पर्यटकों से खचाखच भरे हुए इटली के कई शहर जैसे अम्ब्रिया, लासियो और ला मार्के भूकंप से प्रभावित हुए हैं। रिपोर्टों के मुताबिक यहाँ भूकंप के कारण मरने वालों की संख्या 60 से ज़्यादा बताई जा रही है। वहीं एक गांव एक्यूमोली में 150 से ज़्यादा लोग लापता हैं। कई शहरों और गांवों में अब भी बड़ी संख्या में लोग मलबे में फंसे हुए हैं, जिससे मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका बनी हुई है। बीबीसी संवाददाताओं के भेजे विवरण के साथ हरिता कांडपाल।
इटली में कल रात आए एक जबरदस्त भूकंप के कारण देश के मध्य हिस्से में पहाड़ी इलाके के कई शहर और गांव तबाह हो गए हैं। भूकंप की तीव्रता 6.2 बताई जा रही है। ये भूकंप स्थानीय समय के अनुसार रात करीब 3:30 बजे आया, जब लोग अपने घरों में सो रहे थे। रात का समय होने की वजह से लोगों के बचकर निकलने का मौका कम था और कई लोगों की मौत हो गई। भूकंप के झटके इतने जबरदस्त थे कि पेस्कारा डेल ट्रोंटो गांव लगभग जमींदोज हो गया है। मरने वालों में ज्यादातर इसी गांव के लोग हैं और ये संख्या बढ़ने के आसार बने हुए हैं। वहीं आमाट्रिचे शहर का काफी हिस्सा तबाह हो चुका है। आमाट्रिचे के मेयर सर्गियो पिरोजी ने कहा,
पहला काम सड़कों से मलबा हटाना है जिससे आने जाने का रास्ता साफ हो सके। आधा शहर गिर चुका है, कई लोग मलबे में फंसे हुए हैं।
सर्गियो पिरोजी के शब्द। आमाट्रिचे का एक गांव एक्यूमोली भूकंप के केंद्र के नजदीक है और भूकंप से यहां जबरदस्त नुकसान हुआ है। एक्यूमोली में एक ही परिवार के 4 लोग मृत पाए गए। इसी गांव में मलबे में फंसे अपने परिवार वालों के लिए परेशान 2 महिलाओं ने बीबीसी को बताया,
हम 2 घंटे से मदद का इंतजार कर रहे हैं। मेरा भाई और मेरे 2 बच्चे मलबे में फंसे हुए हैं।
मेरा बेटा, 2 पोते और मेरी बहू अब भी मलबे के नीचे हैं।
राहत कर्मी कई शहरों और गांवों में ध्वस्त हुई इमारतों के मलबे से लोगों को निकालने में लगे हुए हैं। एक फोटोग्राफर एमिलियानो ग्रिलोटी भूकंप के बाद सबसे पहले आमाट्रिचे पहुंचने वाले पत्रकारों में से एक थे। बीबीसी से बातचीत में उन्होंने बताया,
इस वक्त कई 100 राहत कर्मी लोगों को मलबे से निकालने में लगे हुए हैं। आमाट्रिचे में तबाही मच गई है। इटली के सबसे सुंदर गाँव में से एक गाँव ध्वस्त हो चुका है। सब कुछ मलबे में तब्दील हो गया है।
एमिलियानो ग्रिलोटी के शब्द। इटली की राजधानी रोम में भी भूकंप के कारण कई इमारतें करीब 20 सेकंड तक थरथराती रहीं। नेपल्स के बोलोंगो में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। बताया जा रहा है कि कल रात से अब तक 80 आफ्टरशॉक्स महसूस किए गए हैं। भूकंप की तबाही में घायल हुए 20 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इटली के प्रधानमंत्री मैट्टे रेंजी ने भूकंप के बाद बचाव कार्य में लगे सुरक्षा कर्मियों का शुक्रिया अदा किया।
ये वक्त दुख मनाने का नहीं बल्कि काम में लगने का है। इटली के लोग जानते हैं कि मुसीबत के समय क्या करना है। हम मदद पहुंचाने के लिए कोई शहर, गांव, घर या परिवार नहीं छोड़ेंगे।
मैटो रेंसी के शब्द। भूकंप का केंद्र रोम से करीब 100 किलोमीटर उत्तर पूर्व में एक्यूमोली के पास जमीन से केवल 10 किलोमीटर नीचे बताया जा रहा है। कल रात भूकंप के एक शक्तिशाली झटके के बाद करीब 20 मिनट तक लगातार आफ्टरशॉक्स आते रहे, जिससे कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है।
उधर भारत के पूर्वी इलाकों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप के झटके म्यांमार, पश्चिम बंगाल और आसपास के क्षेत्र में महसूस किए गए। 6.8 तीव्रता से आए भूकंप का केंद्र पड़ोसी देश म्यांमार बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि भूकंप का केंद्र जमीन से 91 किलोमीटर नीचे था, लेकिन भूकंप के बाद जान माल के नुकसान की अभी कोई खबर नहीं है।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम, बीबीसी हिंदी।
केंद्रीय कैबिनेट ने किराए पर कोख यानी सरोगेसी पर बिल को मंजूरी दे दी है। इस प्रस्तावित कानून में सरोगेसी को लेकर नए प्रावधान लाए गए हैं और इसमें व्यावसायिक सरोगेसी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सरकार द्वारा पास किए गए ड्राफ्ट कानून के अनुसार निसंतान दंपत्ति सरोगेट माओं को किराए पर नहीं ले सकते, बल्कि करीबी रिश्तेदारों को बच्चा कैरी करने को कह सकते हैं। कैबिनेट मीटिंग के बाद सुषमा स्वराज ने रिपोर्टर से कहा कि कमर्शियल सरोगेसी पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। विनीत खरे की रिपोर्ट।
इस नए कानून के अनुसार अगर कोई दंपत्ति सरोगेसी से पैदा हुए बच्चे को नहीं अपनाता तो उन्हें 10 साल तक की जेल या 10 लाख तक के जुर्माने का सामना होगा। सरोगेसी को लेकर भारत में कोई कानून नहीं है और आरोप लगते रहे हैं कि इस कारण कई गरीब महिलाओं का शोषण होता है। पत्रकारों से बातचीत में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा,
सरोगेसी को जहां डिफाइन किया है उसकी परिभाषा में ये लिख दिया गया, कोई पैसा, कोई चार्ज, कोई फीस, कोई मॉनिटरी बेनिफिट उसमें नहीं दिया जाएगा, तभी वो एल्ट्रिस्टिक सरोगेसी कहलाएगी, उसके बिना नहीं कहलाएगी, वरना वो कमर्शियल सरोगेसी की डेफिनेशन में आ जाएगी।
व्हाट विल बी द रोल ऑफ द सरोगेसी क्लिनिक्स फॉर एल्ट्रिस्टिक सरोगेसी?
जो क्लिनिक्स ही करेंगे और करेगा कौन? दे विल नॉट चार्ज, किससे चार्ज करेंगे? वो तो अपना प्रोसीजर जो कर रहे हैं उसकी चार्जिंग करेंगे। जो गरीब महिला को आप पैसा देते हैं वो इसको कमर्शियल बनाता है, वो तो अपने प्रोसीजर का पैसा देंगे जो प्रोसीजर कर रहे हैं, लेकिन उस गरीब महिला को लेकर के जो पैसा लेकर के खरीद के लाते हैं, मैंने इसलिए इसको कोक का व्यापार कहा।
इस प्रस्तावित कानून के मुताबिक विदेशी नागरिकों को सरोगेसी की अनुमति नहीं होगी। किसी महिला को पूरी जिंदगी में सिर्फ एक बार सरोगेट माँ बनने की इजाजत होगी। सरोगेसी बच्चे अपनाने वाले दंपत्ति के लिए महिला की उम्र 23 और 50 वर्ष के बीच और पुरुष की उम्र 26 और 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए। लेकिन क्या ऐसा करने से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे या फिर समलैंगिकों के अधिकारों का हनन नहीं होगा? सुषमा स्वराज, सुषमा स्वराज कह रही थी हम लिव इन रिलेशनशिप और समलैंगिक रिश्तों को पहचान नहीं देते और इसलिए हम उन्हें इसके लिए हकदार नहीं बनाना चाहते। सरोगेट महिला बनने के लिए उसका विवाहित होना और एक स्वस्थ बच्चे की मां होना जरूरी होगा। सरोगेसी क्लिनिक का रजिस्टर्ड होना भी जरूरी होगा। अगर क्लिनिक सरोगेट मां की उपेक्षा करता है या फिर पैदा हुए बच्चे को छोड़ने में हिस्सा लेता है, कोई रोल अदा करता है, तो क्लिनिक चलाने वालों पर कम से कम 10 वर्ष की सजा और 10 लाख तक का जुर्माना होगा। सरोगेसी की अनुमति नजदीकी रिश्तेदारों को ही दी गई है। सरोगेसी से पैदा हुए बच्चे को सभी कानूनी अधिकार होंगे। सुषमा स्वराज,
मुझे दुख है ये बात कहते हुए कि जो चीज जरूरत के नाम पर शुरू की गई थी वो अब शौक बन गई। कितने ऐसे उदाहरण हमारे सामने और बड़ी सेलिब्रिटीज के हैं जिनका अपना बच्चा एक नहीं दो दो हैं। तो ये जरूरत के लिए तो है अनुमति, शौक के लिए नहीं है। और ना इसलिए है कि क्योंकि पत्नी प्रसव पीड़ा सहना नहीं चाहती, इसलिए चलो सरोगेट चाइल्ड कर लो।
प्रस्तावित कानून के अनुसार सरोगेसी की अनुमति तभी दी जाएगी जब दंपत्ति में से कोई भी पार्टनर बांझपन का शिकार हो, जिसके कारण दंपत्ति अपना बच्चा पैदा नहीं कर सकते हो। अगर दंपत्ति का कोई अपना बच्चा हो या फिर उन्होंने कोई बच्चा गोद ले रखा हो तो उन्हें सरोगेसी की इजाजत नहीं होगी। हैदराबाद स्थित डॉक्टर पद्मजा फर्टिलिटी IVF सेंटर के दिवाकर रेड्डी सरोगेसी से जुड़े आरोपों से इनकार करते हैं।
एक तरफ जो सरकार के मन में जो संशय है कि ये औरतों को लूटा जा रहा है और औरतों के सेहत के ऊपर बुरी असर बहुत सारा सरोगेसी करने से हो रहा है, ऐसे चीजों में एक्चुअली देर इज उसमें कोई सत्य नहीं है।
इस बिल को संसद के अगले सत्र में पेश किया जाएगा। इस प्रस्तावित कानून के अंतर्गत एक राष्ट्रीय सरोगेसी बोर्ड बनाया जाएगा और उसके नीचे केंद्र और राज्यों में एप्रोप्रिएट बोर्ड बनेंगे। राष्ट्रीय सरोगेसी बोर्ड के प्रमुख स्वास्थ्य मंत्री होंगे और 3 महिला सांसद इसकी सदस्य होंगी। 2 सांसद लोकसभा से चुनी जाएंगी और 1 राज्यसभा से। विनीत खरे, BBC दिल्ली।
भारतीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज से भारत प्रशासित कश्मीर की 2 दिन की यात्रा पर हैं। उन्होंने आज घाटी में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुखों से बात की। घाटी में 1.5 महीने से अलगाववादी आंदोलन जारी है। राजनाथ सिंह की यात्रा आरंभ होते ही एक और प्रदर्शनकारी CRPF की फायरिंग में मारा गया। भारत सरकार ने स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए श्रीनगर में BSF को तैनात किया है। श्रीनगर से रियाज मसरूर की रिपोर्ट।
भारतीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के कश्मीर पहुंचते ही दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा जिले में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसके दौरान CRPF और पुलिस की फायरिंग में एक 18 वर्षीय युवा मारा गया। इस घटना से लोगों में और भी गुस्सा भड़क उठा। पुलवामा के मोहम्मद अब्दुल्ला वानी ने घटना का आंखों देखा हाल यूं बताया।
बेताशा फायर किया, वहाँ पे कलर गन यूज किया, औरत उसके कपड़े फाड़ दिए, उन्होंने मकानों हमारे मकान में, मैं मोहम्मद अब्दुल्ला वानी बोल रहा हूँ, मेरे मकान में उन्होंने शेलिंग किया है और पत्थरबाजी किया। खुद SDF वालों ने और CRPF, मैंने इतना कसूर किया कि मैंने उनको बताया आप इन छोटे बच्चों को क्यों पत्थर मार रहे हैं, क्यों इनको गोलियां चला रहे हैं, क्या इन्होंने किया।
राजनाथ सिंह की श्रीनगर में उपस्थिति के दौरान दक्षिणी जिला पुलवामा में पुलिस ने बताया कि अज्ञात हमलावरों ने पुलिस पार्टी पर ग्रेनेड फेंका जिसमें 5 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। गौरतलब है 8 जुलाई को पुलिस के ऑपरेशन में चरमपंथी कमांडर बुरहान वानी की मृत्यु के बाद छिड़े अलगाववादी आंदोलन पर काबू पाने के लिए पुलिस और CRPF की कार्रवाइयों में अब तक 65 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और 5,000 घायल हैं। 2 पुलिसकर्मी भी प्रदर्शनों के दौरान मारे गए। पिछले महीने भी राजनाथ सिंह ने कश्मीर का दौरा किया, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया था कि शांति बहाली तक बातचीत नहीं हो सकती। इस बार घाटी में प्रवेश करते ही ट्विटर पर राजनाथ सिंह ने लिखा कि वो नेहरू गेस्ट हाउस में उन सब का इंतजार करेंगे जो इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत में यकीन रखते हैं। ये शब्द दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के हैं, जो उन्होंने भारत की पारंपरिक कश्मीर पॉलिसी में बदलाव के तौर पर कहे थे, लेकिन अलगाववादियों ने भारतीय संविधान के भीतर किसी भी हल को रद्द कर दिया है। गौरतलब है पिछले 1 महीने के दौरान पार्लियामेंट में भी बहसें हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में विरोधी दलों के नेताओं के साथ बातचीत के बाद कश्मीर समस्या के स्थायी हल की बात की, लेकिन अभी तक स्थिति बहाल नहीं हुई है और कल ही 12 वर्ष बाद एक बार फिर शहर में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को तैनात किया गया है। श्रीनगर में बीएसएफ के एक अफसर ने बताया कि इन्हें शांति बहाल करने के लिए तैनात किया गया है,
सुरक्षा करने के लिए तैनात किया गया है कि यहाँ पर शांति बहाल कराने के लिए, अच्छा हो के माहौल कराने के लिए यहाँ पर भेजा गया हमारे ड्यूटी के लिए। अच्छा व्यवहार से देखना है, अच्छा काम करवाना है उनसे और शांति बहाली कराने के लिए हमारे यहाँ पर ड्यूटी लगाया गया है, बाकी यहाँ पर सब शांति बहाल हो सबके लिए।
प्रशासन का दावा है कि राजनाथ सिंह सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से भी मिल रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि अलगाववादियों के साथ बातचीत के प्रस्ताव पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है, लेकिन बीएसएफ की तैनाती के बाद लोगों में किसी राजनीतिक प्रक्रिया की कोई आशा नजर नहीं आ रही है।
कश्मीरियों को इंसानियत, जमहूरियत, अमन, तरक्की के नाम पर आज तक धोखे ही धोखे मिले हैं।
राजनाथ सिंह दो बार यहाँ आए, सेपरेटिस्ट को ऑन बोर्ड उन्होंने नहीं लिया जो कि एक मेन पार्टी है, और पाकिस्तान के साथ जो डायलॉग प्रोसेस उनको स्टार्ट करना था वो भी नहीं किया।
वादी पहले से जख्मी है और आज फिर लुहलुहान हुई है। अगर वो चाहते हैं कि ज़मीनी सतह पर तब्दीली आए, उन्हें वो इकदाम उठाने होंगे जिससे वाकई में ये लगे कि कश्मीरियों को कि हाँ मसले कश्मीर के हल के हवाले से इकदाम उठाए जा रहे हैं।
ये तो सिर्फ 1947 से यही चलता है कि हिंदुस्तान के आइन के अंदर कोई बातचीत तस्लीम में नहीं है हुर्रियत पसंद क़यादत को, तो लिहाजा ग्राउंड पे यही मैसेज चली गई है कि भारत की सरकार एक बार फिर से इसको संजीदगी से नहीं ले रही है। जो यहाँ के लोग चाहते हैं, यहाँ के जो लोगों की डिमांड है वो कुछ और है और आपको कुछ ऑफर कुछ और दिया किया जा रहा है।
राजनाथ सिंह अपनी यात्रा के दौरान सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों के उच्च अधिकारियों से मिल रहे हैं। उन्होंने गवर्नर एन वोहरा और मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से भी बात की, लेकिन भारत का पक्ष करने वाले राजनीतिक गुटों का आरोप है कि घाटी में मार्शल लॉ लगाया गया है। उत्तरी कश्मीर के लंगेट क्षेत्र से चुने गए विधायक इंजीनियर रशीद कहते हैं,
जो राजनाथ सिंह जी कहते थे आर्मी का कोई रोल नहीं है, आज काजीगुंड से लेकर करना तक पूरा नेशनल हाईवे आपका आर्मी के हवाले है। लगता है कि यहाँ पर आर्मी के कंट्रोल में सारी बात है। कम से कम एक बार तो कश्मीरी को अपना थोड़ा सा वो अच्छा सा चेहरा दिखाओ।
राजनाथ सिंह के दौरे से एक दिन पहले ही श्रीनगर के कुछ क्षेत्रों से दिन का कर्फ्यू हटाया गया था, लेकिन गृह मंत्री का काफिला जब एयरपोर्ट से झील डल के पूर्वी छोर पर स्थित नेहरू गेस्ट हाउस की तरफ जा रहा था तो सड़कों पर भारी संख्या में मौजूद सुरक्षा कर्मियों और पुलिस के बगैर कोई नजर नहीं आया। रियाज मसरूर, बीबीसी श्रीनगर।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
ये बीबीसी है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फदल के साथ। उत्तर प्रदेश के बाढ़ प्रभावित जिलों में गोंडा के कुछ इलाकों की स्थिति बेहद खराब है। यहां पिछले दिनों एल्गिन चरसडी बांध टूट जाने से कई गांवों में पानी भर गया था। हालांकि कुछ दिनों से बारिश न होने की वजह से पानी तो निकल रहा है, लेकिन घरों में अभी भी कुछ पानी और कीचड़ भरा हुआ है। लोग बांध के ऊपर ही बने अस्थाई टेंटों में रहने को विवश हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने निकले हमारे सहयोगी समीर आत्मज मिश्र ने करनैलगंज इलाके के नखहरा गाँव में इन लोगों से बात की।
ये यही जगह है जहाँ गोंडा जिले में नकहरा गांव के पास में, जहां पे एल्गिन चरसड़ी बांध बहुत पुराना बांध है और इसके पिछले हफ्ते टूट जाने से कई गांव प्रभावित हुए हैं। पानी पूरे गांव में भर गया है। गांव के सभी लोगों को बांध के ऊपर जो रास्ता है वहां पे इन लोगों को टेंट लगा करके और जो अस्थाई टेंट हैं उसमें गाँव के लोगों को रखा गया है, लेकिन गाँव वालों का कहना है कि इनको किसी तरह की कोई सुविधा नहीं मिल रही है। आने को प्रशासन के लोग बहुत आते हैं लेकिन केवल आ करके देख करके लौट जाते हैं।
हाँ, एक महीना लग जाते बच्चा लिए बंधा परी है, घामे मनाई बर्दाश्त होती है। कौन व्यवस्था कोई नहीं करा रहा है, ना कोई देखे आवे, ना पंच, ना प्रधान, ना कोई हाकिम हुकुम, कोई देखे नहीं आवत है।
खाना पीना कैसे हो रहा है?
खाना पीना कैसे हो रहा है? कहूँ कंडी फंडी लावत ऐसी ऐसी लावा जाता है तो सुलगा पुलगा कोनो मेरे एक टाइम खा ली जाते।
तो यहाँ टेंट में कितने दिन से रह रहे हैं?
अब यहाँ टेंट में यहाँ 8 तारीख
का कटा है भैया, बंदा 8 तारीख का कटा है। हाँ, गुड़ियन के बिहान पहर। हाँ, वही सुबह पानी भरगा सा है वही दिन,
मतलब उसी दिन से सब यहाँ रह रहे हैं।
हाँ, वही दिन से रहता है। हाँ, अरे बड़ी तकलीफ है, तो महान सब है वो पल्ली गरमात ही बाल बच्चे चिल्लाए चिल्लाए भागा था। अब कौन उपाय गिन जाए, गरमात इतना पानी लागे कहाँ जावा जाए रहा जाए।
तो कोई आया नहीं? प्रशासन वाले कह रहे हैं कि
आवा तो बहुत जरे, लेकिन कोई पुरघाट नहीं लगावा साहब।
नहीं, जो सरकारी लोग हैं वो लोग आए, अफसर वगैरह?
हाँ, कुछ आवा कोई नहीं।
राशन वासन नहीं बंटवाया?
अरे राशन का बटा है,
पे जनता दया नहीं है, यहाँ मिलता नहीं है कुछ हमको सबका।
तो कैसे खाना पीना कैसे सब खा रहे हैं?
अरे तो कौने में मजूरी धतूरी कह के खाई थे और का कौने।
बच्चों तुम लोग बताओ, तुम लोग पढ़ते हो? कहाँ स्कूल नहीं जाते? तुम लोग जाते हो स्कूल?
नहीं।
क्या करते हो? स्कूल ही नहीं जाते हो?
नहीं।
अच्छा, कोई स्कूल नहीं जाता?
नहीं।
तो पढ़ते हो? कहाँ पढ़ते हो?
गौरा।
किस स्कूल में?
आनंद ज्ञान पब्लिक स्कूल। आनंद ज्ञान पब्लिक स्कूल।
इनके स्कूल में इसका मतलब लोग रह रहे होंगे इसलिए वहाँ पे बंद होगा ना?
हाँ, स्कूल बंद रहा।
रायपुर का जब कटा है, पानी भर गया है, तो सब स्कूल में भरे हैं आदमी, सब भरे हैं, तो लड़का पढ़े कहाँ जा सके? अपना सब कब्जा किए हैं तो ही भर है, भरे
स्कूल भी बंद है।
बंद है स्कूल। गौरा में जाइए, नकहरा में जाइए, देखिए ये बंद है स्कूल। और सब छकाए हैं, सब गठड़ी मठड़ी धई के और सर सामान धई के अपन छकाए हैं। लड़का घरे हैं, सबका लड़का घरे हैं, पढ़े जाते नहीं हैं।
ये थे गोंडा के नकहरा गांव से समीराजपत मिश्र बाढ़ पीड़ितों के साथ। हांगकांग में लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारी फिर सड़कों पर हैं। वो 6 उम्मीदवारों को अगले महीने चुनाव लड़ने से रोके जाने का विरोध कर रहे हैं। चीन की सरकार को संदेह है कि ये उम्मीदवार आज़ादी समर्थक हैं। दुनिया जहान में आज अशोक कुमार पड़ताल कर रहे हैं कि क्या हांगकांग में पूर्ण लोकतांत्रिक व्यवस्था चीन में एक पार्टी के शासन वाली व्यवस्था के लिए चुनौती होगी।
दुनिया जहान। दिलकश बीच, सैलानियों का हुजूम, ऊंची ऊंची इमारतें और उनसे भी ऊंचे इरादे रखने वाले कारोबारी, ऐसा है हांगकांग। कुछ कुछ चीन जैसा, कुछ कुछ पश्चिम के जैसा। हांगकांग में आपको चीन और पश्चिम की संस्कृति का मिलन देखने को मिलता है, लेकिन एक टकराव का गवाह भी ये शहर बन रहा है। ये टकराव है चीन की व्यवस्था के तौर तरीकों और पश्चिम की व्यवस्था के तौर तरीकों के बीच। हांगकांग में फिर सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे हैं और वो इसलिए कि अगले महीने होने वाले लेजिस्लेटिव काउंसिल के चुनाव में 6 उम्मीदवारों को हिस्सा लेने से रोक दिया गया है। और वजह ये बताई गई है कि वो ये साबित नहीं कर पाए कि वो हांगकांग की आज़ादी के समर्थक नहीं हैं। प्रदर्शनकारी इसे राजनीतिक सेंसरशिप का नाम दे रहे हैं।
This is really challenging the basis.
ये तो स्वतंत्र चुनावों के लिए चुनौती है जिसके हांगकांग के लिए गंभीर परिणाम होंगे। फिर तो लोग न चुनावों में खड़े हो पाएंगे और न लोगों से ये कह पाएंगे कि वो उनका समर्थन करें। ये तो ऐसी बात है कि जो हजम नहीं हो सकती।
हांगकांग अब चीन का हिस्सा है, लेकिन वो 150 साल तक ब्रिटेन का उपनिवेश रहा। 1997 में एक देश दो व्यवस्था के सिद्धांत के तहत ब्रिटेन ने हांगकांग को चीन को सौंप दिया। समझौते के तहत चीन सहमत हुआ कि वो हांगकांग को अत्यधिक स्वायत्तता देगा और 50 साल तक इसके आर्थिक और सामाजिक ताने बाने से कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। लेकिन अब हांगकांग में ऐसे लोगों की कमी नहीं जो सोचते हैं कि चीन उन पर अपनी मर्जी और व्यवस्था को थोप रहा है। इसकी क्या वजह है? जेएनयू में प्रोफेसर और चीन मामलों के जानकार स्वर्ण सिंह कहते हैं,
एक ऑब्सेशन है चीन में स्प्लिटिज्म को लेकर कि शायद हांगकांग में ऐसी आवाजें हैं जो आज भी आजादी की बात करती हैं, बहुत कम उसमें नंबर है उनका, पर ये जो एक तरह का पैरानोया का माहौल है वो चीन को हमेशा ओवर रिएक्ट करने पर मजबूर करता है। जबकि आप देखें कि डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट होना ये बड़ी आम बात है, लोग सड़कों पे आ जाएं और आंदोलन करें, ये कोई डेमोक्रेसी के लिए नई बात नहीं है, पर चीन के लिए ये नई बात है। तो इसलिए चीन का हांगकांग जो हिस्सा है उसमें जब भी इस तरह की प्रोटेस्ट होती हैं तो उनको जरूरत से ज्यादा कवरेज इसलिए मिलती है क्योंकि चीन ओवर रिएक्ट करता है उसको लेकर।
लेकिन ये बात भी अपनी जगह सही है कि चीन ने जितनी स्वायत्तता हांगकांग को दी है उतनी अपने किसी और क्षेत्र को नहीं। हांगकांग की अलग पुलिस है, अलग झंडा है, अपनी अलग मुद्रा है। बस विदेश और रक्षा नीतियाँ चीन की सरकार तय करती है। लेकिन हांगकांग की सड़कों पर उतरने वाले लोग जिस तरह की स्वतंत्र लोकतांत्रिक व्यवस्था और निष्पक्ष चुनावों की मांग कर रहे हैं, चीन की सरकार शायद उसके लिए तैयार नहीं है। विश्व मामलों की भारतीय परिषद ICWA में रिसर्च फेलो और चीन मामलों के जानकार राहुल मिश्र कहते हैं,
चीन को कहीं ना कहीं ये आशंका भी है कि अगर इस तरह के
लोकतांत्रिक और सिविल सोसाइटी मूवमेंट्स को रोका नहीं गया, तो इसकी कोई सीमा नहीं। आज ये स्वतंत्रता के लिए हो रहे हैं, कल ये स्वतंत्रता के लिए हो सकते हैं। तो मुझे लगता है चीन ये मौका नहीं गंवाना चाहता है और अभी से ही एक टाइट कंट्रोल रखना चाहता है हांगकांग के ऊपर, जिससे कि आगे चल के उन्हें ऐसी कोई समस्या देखनी ना पड़े।
हांगकांग में 2017 में चीफ एग्जीक्यूटिव के चुनाव को बड़ा इम्तिहान माना जा रहा है। चीनी सरकार ने वादा किया था कि प्रत्यक्ष चुनाव के जरिए लोग अपने नेता का चुनाव कर पाएंगे, लेकिन 2014 में चीन की विधायी समिति ने फैसला लिया कि दो या तीन उम्मीदवारों में से किसी एक को लोग चुन पाएंगे और इन उम्मीदवारों के नामों को नामांकन समिति तय करेगी, यानी कोई भी अपनी मर्जी से चुनाव नहीं लड़ सकता। चीन मामलों के जानकार डॉक्टर राहुल मिश्र कहते हैं कि हांगकांग में इस तरह के नियमों का विरोध होना स्वाभाविक है।
हांगकांग ने ब्रिटिश डेमोक्रेटिक सिस्टम, ब्रिटिश एटलीस्ट वहाँ का जो जिसे हम कहते हैं रूल ऑफ लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ देखा है हांगकांग के लोगों ने, और वो उस चीज़ को छोड़ नहीं सकते हैं। ये वहाँ की एक बहुत ही बेसिक चीज़ है जिसको वो जिसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हांगकांग के लोग। और ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो बाकी जो स्पेशली एडमिनिस्टर्ड रीजन्स हैं तिब्बत वगैरह उनके साथ ये एक्सपीरियंस नहीं है। दूसरा, चीन की जो करंट लीडरशिप है, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग हैं, उनके बारे में ये कहा जाता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर हैं और बहुत टाइट कंट्रोल चाहते हैं वो, न सिर्फ चीन के अंदर बल्कि चीन के एडमिनिस्टर्ड रीजन्स पे भी और इसके साथ साथ दक्षिण चीन सागर पे भी। चीन को लगता है कि हमें बहुत ही यूनिफाइड और एक यूनाइटेड चीन के तौर पे हमें खड़े होना चाहिए।
हांगकांग के अलावा ताइवान और तिब्बत जैसे इलाकों में भी स्वायत्तता और आजादी की बहस चीन के लिए लंबे समय से सिरदर्द रही है। 70 साल बाद भी चीन ताइवान को अपना ही हिस्सा मानता है। ऐसे में अगर हांगकांग से भी आजादी की आवाज उठी तो चीन का चिंतित होना स्वाभाविक है। लेकिन प्रोफेसर स्वर्ण सिंह कहते हैं कि चाहकर भी चीन हांगकांग के ढांचे में ज्यादा रद्दोबदल नहीं कर सकता क्योंकि वो ब्रिटेन के साथ एक समझौते में बंधा है।
अभी हाल में देखें, ताइवान में इलेक्शन हुए तो वहाँ डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी DPP जो इंडिपेंडेंस की बात करती है वहाँ, वो पावर में आ गई है और कुछ लोग उसको भी जोड़कर ये देखते हैं। जाहिर है कि यहाँ हांगकांग में भी बहुत से इस तरह की पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो उसको अपनी इंस्पायरेशन मानती हैं कि DPP को यदि पावर में आई है वहाँ ताइवान में तो हमें भी यहाँ उम्मीद है कि हमें गवर्नमेंट बनाने का मौका मिलेगा और हम इंडिपेंडेंस की बात करेंगे। तो चीन को लगता है कि यहाँ भी इस तरह की ताकतों को बढ़ावा ना मिले तो अच्छी बात है, पर चीन बेसिक ढांचे को, बेसिक लॉ को चेंज नहीं कर सकता। उसमें केवल इंटरप्रिटेशंस की और डेडलाइंस की फेरबदल हो सकती है।
प्रोफेसर स्वर्ण सिंह कहते हैं कि हांगकांग में अब भी लाखों लोगों के पास ब्रितानी नागरिकता है और उनके हितों का मुद्दा अक्सर ब्रितानी संसद में उठता है। हांगकांग राजनीतिक और कूटनीतिक मोर्चे से परे चीन के लिए एक बड़ा आर्थिक केंद्र है और उभरते हुए चीन में उसका बड़ा योगदान है। चीन मामलों के जानकार डॉक्टर राहुल मिश्र कहते हैं,
हांगकांग एक पावर हाउस है एशिया का, बहुत ही बड़ा बिजनेस और ट्रेड हब है जिससे पूरे एशिया का बिजनेस संचालित होता है और ट्रांस अटलांटिक जो ट्रेड है, ट्रांस एशिया जो ट्रेड है, उसमें हांगकांग का बहुत योगदान है। जो भी मैरीटाइम ट्रेड है, जो भी ट्रेड इंटरलिंकेजेस हैं, उसके लिए हांगकांग बहुत इम्पोर्टेंट है।
इसलिए भी चीन हांगकांग में किसी बड़ी उथल पुथल से बचना चाहेगा। हांगकांग में कारोबारियों का एक बड़ा तबका है जो चाहता है कि हर हाल में वहाँ स्थिरता बनी रहे और इसीलिए वो चीन की सत्ता के करीब नजर आता है। लेकिन सड़कों पर उतरने वाले लोगों को अनदेखा करना भी बीजिंग सरकार के लिए शायद संभव नहीं होगा। अलबत्ता ये दुविधा चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के सामने बनी रहेगी कि अगर वो हांगकांग को पूरे लोकतांत्रिक अधिकार देगी तो फिर अन्य जगहों से उठने वाली ऐसी आवाजों को कैसे रोकेगी। अशोक कुमार, BBC दिल्ली।
और अब चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर।
BBC समाचार। मध्य इटली में आए भयंकर भूकंप में कम से कम 70 लोगों की मौत हो गई है और कई शहर और गांव तबाह हो गए हैं। मध्य रात्रि में आए भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 6.2 मापी गई है। भारत सरकार ने नौसेना और एक फ्रांसीसी रक्षा कंपनी के बीच हुए महत्वपूर्ण स्कॉर्पियन पनडुब्बी करार की गुप्त जानकारी लीक होने के मामले की जाँच के आदेश दिए हैं। BBC समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। कार्यक्रम आप तक पहुंचाने में मदद की हेमंत कुशवाहा ने, रेहान फजल को, सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।